नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 18वें रोजगार मेले में 61,000 से अधिक नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। सरकार ने पीएलआई योजना के तहत व्हाइट गुड्स के 8,300 करोड़ रुपए से अधिक के उत्पादन के लिए 5 कंपनियों का चयन किया। निर्वाचन आयोग ने काम में लापरवाही और दुर्व्यवहार के लिए बूथ लेवल अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी। सहकारिता मंत्री अमित शाह आज लखनऊ में उत्तर प्रदेश दिवस समारोह के अवसर पर एक जनपद एक व्यंजन योजना का शुभारंभ करेंगे। देश का विदेशी मुद्रा भंडार जनवरी के मध्य तक 700 अरब डॉलर से अधिक हुआ। रूस, यूक्रेन और अमरीका के प्रतिनिधियों ने अबूधाबी में शांति वार्ता के पहले दौर की बातचीत की। वार्ता आज भी जारी रहेगी और भारत ने रायपुर में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में न्यूजीलैंड को 7 विकेट से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की बढ़त हासिल की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित 18वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में नवनियुक्त 61,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र जारी करेंगे। वे इस अवसर पर युवाओं को संबोधित भी करेंगे। एक रिपोर्ट।
18वां रोजगार मेला देश के 45 स्थानों पर आयोजित किया जा रहा है। केंद्र सरकार के अनेक मंत्रालयों और विभागों के लिए भर्तियां हो रही हैं। नई भर्ती के लिए देश भर से चुने गए युवा गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, वित्त सेवा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग तथा अन्य विभागों में नियुक्त किए जाएंगे। रोजगार मेला एक प्रमुख सरकारी पहल है जिसका उद्देश्य रोजगार सृजन करना है। देश भर में रोजगार मेले के माध्यम से अब तक 11 लाख से अधिक नियुक्ति पत्र दिए जा चुके हैं। प्रिया और आरजू की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं दीपमाला कौशिक।
सरकार ने व्हाइट गुड्स यानी वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, डिशवॉशर और एयर कंडीशनर जैसे घरेलू उपकरणों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन पीएलआई योजना के चौथे चरण में 5 कंपनियों का चयन किया है। इन कंपनियों ने 863 करोड़ रुपए निवेश की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि ये कंपनियां एयर कंडीशनर के पुर्जों का निर्माण करती हैं। मंत्रालय ने कहा कि 13 आवेदनों के मूल्यांकन के बाद इन 5 कंपनियों को अस्थायी रूप से चुना गया है। अब तक पीएलआई योजना के अंतर्गत कुल 85 कंपनियों का चयन किया जा चुका है। निर्वाचन आयोग ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य चुनाव अधिकारियों को किसी भी कोताही के मामले में बूथ लेवल अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। निर्वाचन आयोग ने कहा कि ड्यूटी में चूक, लापरवाही, जानबूझकर आयोग के निर्देशों का अनुपालन नहीं करने या जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और मतदाता पंजीकरण नियम 1960 के प्रावधानों के उल्लंघन के मामलों में निलंबन सहित कड़ी कार्रवाई होगी। पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के बीच मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय ने सभी जिला प्रशासनों को पुनरीक्षण के दौरान कानून व्यवस्था में गड़बड़ी डालने की किसी भी घटना में तुरंत FIR दर्ज करने का निर्देश दिया है। सर्वोच्च न्यायालय के 19 जनवरी के आदेश के संदर्भ में ये निर्देश जारी किए गए हैं। पत्र में कहा गया है कि किसी भी क्षेत्र में यदि हिंसा या सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की घटना होती है तो SIR से संबंधित तो सुनवाई का काम तुरंत रोक दिया जाएगा और मुख्य चुनाव अधिकारी की अनुमति के बाद ही फिर शुरू होगा। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज लखनऊ में उत्तर प्रदेश दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे और आयोजन को संबोधित करेंगे। समारोह का आयोजन राष्ट्र प्रेरणा स्थल में किया गया है। श्री शाह इस अवसर पर एक जनपद एक व्यंजन योजना का शुभारंभ करेंगे। इस पहल से राज्य के प्रत्येक जिले के पारंपरिक व्यंजन की पहचान की जाएगी। गृहमंत्री समारोह के दौरान सरदार पटेल औद्योगिक क्षेत्र कार्यक्रम का भी शुभारंभ करेंगे। वे उत्तर प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना के तहत उत्कृष्टता हासिल करने वाले जनपदों को पुरस्कार देंगे। वे इस अवसर पर उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2025-26 भी प्रदान करेंगे। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कल त्रिपुरा में 365 करोड़ रुपए लागत की 8 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य जनजातीय और दूर दराज के इलाकों में सड़क संपर्क, बिजली की पहुंच में सुधार लाना और आजीविका को बढ़ावा देना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। देश के विदेशी मुद्रा भंडार में 1,416 करोड़ डॉलर से अधिक की वृद्धि हुई है। 16 जनवरी को समाप्त हुए सप्ताह में ये बढ़कर 701 अरब डॉलर से अधिक हो गया। रिजर्व बैंक के अनुसार विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों में 9 अरब 60 करोड़ डॉलर की वृद्धि हुई और पिछले सप्ताह ये 560 अरब 50 करोड़ डॉलर हो गया। चौथा भारत ऊर्जा सप्ताह 27 से 30 जनवरी तक गोवा में आयोजित होगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कल शाम नई दिल्ली में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कहा कि भारत ऊर्जा सप्ताह 2026 ऊर्जा सुरक्षा, आर्थिक विकास और स्थिरता के प्रति देश की प्रतिबद्धता दर्शाता है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारत ऊर्जा सप्ताह पहल में काफी मजबूती आई है।
भारत ऊर्जा सप्ताह 2026 अब तक का सबसे बड़ा कार्यक्रम होगा। इसमें 75,000 प्रतिनिधि, 600 से अधिक प्रदर्शक, 180 अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शक, 500 से अधिक वैश्विक वक्ता शामिल होंगे। इस दौरान 120 से अधिक सत्र आयोजित किए जाएंगे। इस चार दिवसीय कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा मंच, बिम्स्टेक और यूरेशियन आर्थिक संघ जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी हिस्सा लेंगे। मुख्य सम्मेलन के इतर कई अन्य कार्यक्रम और गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। इनमें 9वीं प्रधानमंत्री गोलमेज बैठक भी शामिल है। गोलमेज सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैश्विक कंपनियों के सीईओ, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और प्रमुख वैश्विक ऊर्जा और प्रौद्योगिकी कंपनियों के प्रमुखों के साथ बातचीत करेंगे। अंकित कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से करिश्मा राय।
सक्रिय सुशासन और समयबद्ध कार्यान्वयन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रमुख पहल प्रगति ने अपनी 50वीं बैठक के साथ बड़ी उपलब्धि हासिल की है। प्रधानमंत्री ने 2015 में इस मंच की शुरुआत की थी। इस विशेष श्रृंखला में आज छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय राजमार्ग 30 के रायपुर कोडेबोर्ड खंड को 4 लेन का बनाए जाने पर पेश है हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
राष्ट्रीय राजमार्ग 30 के 43 किलोमीटर लंबे रायपुर कोदेबाद खंड को 4 लेन में विकसित करना मध्य छत्तीसगढ़ में राजमार्ग आधुनिकीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। यह परियोजना राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम के अंतर्गत भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI द्वारा कार्यान्वित की गई थी। सितंबर 2016 में इस परियोजना को 987 करोड़ 88 लाख रुपए की स्वीकृत लागत के साथ मंजूरी प्रदान की गई। फरवरी 2023 में इस परियोजना की समीक्षा प्रगति के अंतर्गत की गई, जिसमें लंबित भूमि हस्तांतरण और सामग्री आपूर्ति से जुड़े मुद्दों पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया। प्रगति समीक्षा के पश्चात PMG उपसमूह तथा राज्य स्तर पर निरंतर बैठकों के माध्यम से सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, विद्युत मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, NTPC, DRDO और राज्य सरकार के बीच प्रभावी समन्वय स्थापित किया गया। इन प्रयासों के परिणाम स्वरूप परियोजना ने 100% भौतिक प्रगति हासिल की और 20 जून 2023 को इसे यातायात के लिए चालू कर दिया गया। प्रगति की भूमिका शेष भूमि और सामग्री आपूर्ति से संबंधित समस्याओं के समाधान में महत्वपूर्ण रही, जिससे परियोजना को समय पर पूरा किया जा सका। अक्षित वैद्यान के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा है कि बांग्लादेश अराजकता, असुरक्षा और अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न का सामना कर रहा है। नई दिल्ली में कल शाम पत्रकार वार्ता के दौरान ऑडियो संदेश में शेख हसीना ने बांग्लादेश के नागरिकों से लोकतंत्र बहाल करने के लिए जन समर्थन की अपील की। रूस, यूक्रेन और अमरीका के प्रतिनिधियों ने यूक्रेन युद्ध समाप्त करने के बारे में कल अबूधाबी में पहले दौर की वार्ता की। रूस और यूक्रेन के बीच लगभग 4 वर्ष से चल रहे संघर्ष के दौरान ये पहली बैठक थी जिसमें तीनों देश के प्रतिनिधि शामिल हुए। एक रिपोर्ट।
अमेरिकी अधिकारियों ने बताया कि कल की बातचीत रचनात्मक रही, बातचीत आज भी जारी रहेगी। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को युद्ध समाप्त करने के लिए तैयार होना होगा। पहले दिन की वार्ता के बाद श्री ज़ेलेंस्की ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि त्रिपक्षीय बैठक से अभी कोई निर्णय निकालना जल्दबाजी होगी। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमरीका के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और जेयर्ड कुशनर के बीच मॉस्को में हुई लंबी बैठक के बाद ये त्रिपक्षीय बातचीत हो रही है। संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नहयान ने वार्ता शुरू होने का स्वागत किया है। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं शक्ति प्रताप सिंह।
भारत ने कल रायपुर में T20 क्रिकेट श्रृंखला के दूसरे मैच में न्यूजीलैंड को 7 विकेट से हरा दिया। न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट पर 208 रन बनाए। जवाब में भारत ने 15 ओवर और 2 गेंद में 3 विकेट पर 209 रन बनाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने 37 गेंदों पर नाबाद 82 रन बनाए, जबकि ईशान किशन ने 32 गेंदों में 76 रन जोड़े। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। इसके साथ ही भारत ने 5 मैचों की श्रृंखला में 2-0 से बढ़त बना ली है। इधर महिला प्रीमियर लीग के 15वें मैच में आज वडोदरा के बीसीए स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और दिल्ली कैपिटल्स आमने सामने होंगे। अब बात करते हैं टेबल टेनिस की, जहां मानुष शाह और दिया चिताले की जोड़ी ने कल ओमान में WTT कंटेंडर मस्कत 2026 का मिक्स्ड डबल्स खिताब जीत लिया।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस पर बधाई दी है। श्री शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि सनातन संस्कृति और गंगा यमुना नदियों की पावन भूमि की समृद्ध विरासत के साथ प्रदेश ने हमेशा देश को संकल्प और शक्ति पथ पर अग्रसर किया है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
धन्यवाद जागृति। मौसम की पहली बर्फबारी को आज सभी अखबारों ने प्रथम पृष्ठ पर सचित्र प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान ने लिखा है, पहली बर्फबारी और बारिश से ठिठुरा वसंत। दैनिक भास्कर ने बदला मौसम शीर्षक से श्रीनगर में बर्फबारी को सचित्र प्रकाशित करते हुए लिखा है, पहाड़ों पर बर्फबारी का वसंत। नव भारत टाइम्स की सुर्खी है, पहाड़ों पर बिछी चांदी। पंजाब केसरी ने पराक्रम दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी के वक्तव्य को प्रमुखता दी है, भारत एक सशक्त राष्ट्र के रूप में अपनी पहचान बना रहा है। दैनिक जागरण ने प्रतिष्ठित पत्रिका द इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट को सुर्खी बनाया है, प्रधानमंत्री मोदी से सीखे दुनिया, बाहरी दबावों की ऊर्जा को देश के विकास में कैसे लगाए। पत्रिका ने प्रधानमंत्री की व्यवहारिक और संतुलित नीति की सराहना की। अमर उजाला ने संपादकीय पृष्ठ पर द न्यूयॉर्क टाइम्स से लेख प्रकाशित किया है, मनुष्य के बगैर मशीन अधूरी है। इसमें कहा गया है कि अभी तक कोई ऐसा प्रमाण नहीं मिला है कि AI ऐसे मौलिक विचार पैदा कर सके जो मानव मस्तिष्क की कल्पना से परे हो।
अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 18वें रोजगार मेले में 61,000 से अधिक नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। सरकार ने PLI योजना के तहत व्हाइट गुड्स के 8,300 करोड़ रुपए से अधिक के उत्पादन के लिए 5 कंपनियों का चयन किया। निर्वाचन आयोग ने काम में लापरवाही और दुर्व्यवहार के लिए बूथ लेवल अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी। सहकारिता मंत्री अमित शाह आज लखनऊ में उत्तर प्रदेश दिवस समारोह के अवसर पर एक जनपद एक व्यंजन योजना का शुभारंभ करेंगे। देश का विदेशी मुद्रा भंडार जनवरी के मध्य तक बढ़कर 700 अरब डॉलर से अधिक हुआ। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।